हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 71 और 72। श्लोक क्रमांक 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः सशान्तिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो यहां पे समझाया जा रहा है कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है वो किस प्रकार से चलता है। व्रजेत किम, इस बात का उत्तर दे रहे हैं और श्रील बलदेव बुद्ध भूषण इसमें कमेंट करते हैं। पहले उनकी कमेंट्री को हम देखेंगे, फिर प्रभुपाद जी की तात्पर्य को देखेंगे कि चरति निस्पृह, यानी कि कुछ खाता है तो केवल जीवन रक्षा के लिए खाता है और जितने भी इंद्रिय भोग के विषय आते हैं उनका वो उनको उसे वैराग्य होता है, उसको विरक्ति होती है। शरीर के निर्वाह के अलावा वो कुछ भी जो इंद्रिय तृप्ति के विषय आते हैं उनको स्वीकार नहीं करता। जो शरीर चलाने के लिए चाहिए बस उतना ही स्वीकार करता है और इसके साथ साथ ये भावना नहीं रहती है कि ये वस्तुएं मेरी हैं। जो पूर्वगत कर्मों के अनुसार मुझे भोग मिल रहे हैं वो मेरे नहीं है, ये भावना रहती है और अपने शरीर से उसकी पहचान नहीं होती, अपने आप को शरीर नहीं मानता। इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इस जगत पर चलता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति रहता है वो शांति को प्राप्त होता है। प्रभुपाद के तात्पर्य को देखिए, निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना रखना, ना करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रियता है। कभी भी आत्मा इच्छा के बिना नहीं रह सकता, लेकिन अगर कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा है हमारे हृदय में तो इसी को शास्त्रों में निष्प्रिया होने की बोला जाता है, यानी अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा त्याग करके केवल कृष्ण को सुख देने की इच्छा रह जाए तो यही निष्प्रियता है, इच्छा शून्यता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना मृत की सिद्ध अवस्था है। अर्थात जब हम पूरी तरह से मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाएंगे तो ये अहंकार प्रकट होगा कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। और अगर ये व्यक्ति समझ लेता है तो फिर बिल्कुल उसको अनुभव हो जाता है कि मैं केवल कृष्ण की सेवा के लिए ही अपने शक्ति को, अपनी बुद्धि को और अपने वाणी को हर प्रकार से भगवान की सेवा में ही नियोजित रखूंगा। तो इस प्रकार की अवस्था कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। हम लोग बीच में कहीं टंगे हैं, हम सुनते हैं शरीर नहीं है, हम सुनते हैं कृष्ण के दास हैं, लेकिन फिर भी भोग की कार्य भी करते हैं और भक्ति के कार्य भी करते हैं। तो सिद्ध अवस्था में केवल हम भक्ति के कार्य करेंगे, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। यानी किसी भी वस्तु को देखता है तो उसका संबंध भगवान से जोड़ के देखता है, इसलिए भोग बुद्धि का उपज मन में नहीं होता है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। तो ये तो हमने अभी चर्चा कर लिया है। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है, यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे कि इच्छा शून्यता का अर्थ यही है कि अपनी हर इच्छा को भगवान की इच्छा से या भगवान की सेवा के संग जोड़ देना। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है लोगों को समझने में। खाने की इच्छा, सोने की इच्छा, जो भी इच्छा हमारे हृदय में है, कामम तुदास्य न तु काम कामेय, अपनी हर इच्छा को भगवान की सेवा से नियोजित कर दें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम शांति को, सुख शांति को प्राप्त होंगे, और उसके अलावा कोई तरीका नहीं, असंभव है। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम समझ जाएं और उसको अपने जीवन में अप्लाई करें तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईशावास्यम इदम सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। तो आप कहेगा व्यक्ति, ठीक है तो आप बोल रहे हो ये वस्तु आपकी नहीं है तो हमको दे दो। नहीं, जो वस्तुएं हमारे संरक्षण में भगवान के द्वारा दी गई हैं वो किसी भौतिकतावादी व्यक्ति को हम नहीं देते, क्योंकि उसका उपयोग भगवान वो भोग के लिए करेगा, भगवान के लिए नहीं करेगा। तो ठीक है वस्तुएं हमारी नहीं है, लेकिन इनका उपयोग हम भगवान की सेवा में करेंगे, इस कारण से इनका हम संरक्षण करते हैं ज़्यादा ध्यानपूर्वक, और अधिक ध्यानपूर्वक संरक्षण करते हैं ताकि भगवान की सेवा में हम ठीक प्रकार से इसको उपयोग कर सकें, ये भाव समझते हुए कि इस जगत की सभी वस्तुएं भगवान की हैं। देखिए ये तो सत्य बात है कि इस जगत की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, आपकी नहीं है, आप कुछ लेके नहीं आए थे, बल्कि अपना शरीर तक लेके नहीं आए थे, वो भी हम जानते हैं कि किसी ने हमको दिया है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो यानी कि जब ये वस्तुएं हमारी हैं नहीं तो निश्चित रूप से किसी और की हैं, तो वो किसकी है जानने के लिए हमको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, और भगवान इस बात को बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्वितः। जो व्यक्ति समझता है कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत के स्रोत हैं, स्वामी हैं, तो ये भी समझता है कि सभी वस्तुएं भगवान की हैं, और भगवान की हैं तो उनके उपयोग में आना चाहिए, उनकी सेवा में आना चाहिए, और मेरा भी उत्स जो है, मेरा भी प्रभाव या मेरी उत्पत्ति भी जो है भगवान से हुई, इसलिए मेरा भी अस्तित्व भगवान की सेवा के लिए है। अगर इस सिंपल सी बात हम समझ लें तो भगवद्गीता को हमने समझ लिया है और हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है, और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। यानी कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि भले ही हम अभी कृष्ण नहीं हैं, बाद में कृष्ण बन जाएंगे, तब भी इस धारणा के अनुसार हमको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। नवे अध्याय में भगवान इस बात को बोलते हैं, हमको अपना शाश्वत दासत्व भगवान कृष्ण के प्रति स्वीकार करना होगा, क्योंकि यही सत्य है, शास्त्र इसी बात को बोल रहे हैं, भगवद्गीता इसी बात को बोल रही है, और इसको हम स्वीकार कर लेते हैं और भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो शांति का मार्ग बिल्कुल खुला है, निश्चित रूप से शांति की प्राप्ति हमको होगी। और होगी क्या, इसी जीवन में इसी समय हम क्लेशों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति का अनुभव करते हैं, अगर भगवान की एकदम कड़ी एकदम बढ़िया से सेवा करने का हम प्रयास करते हैं, पूरी शक्ति लगाकर कृष्ण की सेवा करते हैं, जितनी मात्रा में कृष्ण की सेवा करते हैं उतना व्यक्ति अनुभव करता है अपने जीवन में सुख और शांति का। लास्ट श्लोक को देखेंगे, एषा ब्राह्मे स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य वुमुह्यति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्माणमृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंत समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो प्रभुपाद जी बहुत क्लियर बोल रहे हैं, ब्रह्म निर्माण का मतलब इम्पर्सनल लिबरेशन यानी कि निराकार में मुक्ति की बात नहीं है, ब्रह्म निर्माण का अर्थ है भगवान के धाम की प्राप्ति। तो अगर इस प्रकार की चेतना से हम युक्त हो जाते हैं, समझ लेते हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, तो इस चेतना के आधार पर कृष्ण का स्मरण करते हुए हमें भगवान धाम को जा सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति यह कह सकते हैं, इस तरह से समझे कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बहुत देर में समझ पाए इस बात को तो उसको लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर वो व्यक्ति समझ जाए और बहुत दृढ़ता से विश्वास के संग भगवान का आश्रय ले ले तो एक क्षण में भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। वस्तुतः विचार करें तो भगवान के धाम में और हम में केवल एक क्षण की दूरी है। क्या मतलब इसका, मतलब ये कि मृत्यु के समय यदि हमने उस क्षण भगवान का स्मरण कर लिया तुरंत ही भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। बस सारा जो हम साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वो इसीलिए ताकि हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर सकें। तो अगर कोई कहे अभी मेरी नौकरी है, पत्नी है, बच्चे हैं और मैं भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, तो क्या मृत्यु के समय भी आप ये बात बोलेंगे? तो इसलिए हमें तैयारी करना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हों, भगवान का स्मरण करने का नित्य रूप से। जब हम नित्य रूप से अभ्यास करेंगे भगवान का स्मरण करने का, तो भगवत कृपा से मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण करेंगे, और अगर ऐसा स्मरण होगा तो हम निश्चित रूप से भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तात्पर्य, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। क्यों प्राप्त नहीं होगा? क्योंकि उसे विश्वास नहीं है। अगर हम भगवान की बातों पर विश्वास रखें तो तुरंत प्रगति हो सकती है। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है, यही बात मैं बोल रहा था। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत, यानी कि भोगोन्मुखी कार्य करना बंद करना, अपनी इंद्र तृप्ति के कार्यों को बंद करके कृष्ण की इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगना, ये है ब्रह्म निर्वाण। यह है वैकुंठ का जीवन जिसमें हर जीवात्मा भगवान की इंद्र तृप्ति के लिए ही कार्य करता है। तो वैकुंठ में जाने से पहले वैकुंठ के जीवन शैली का हमें अभ्यास करना होगा। ये प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद्गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। यानी कि भगवद्गीता के अनुसार ऐसा नहीं है जैसा कि बौद्ध दर्शन बोलता है कि मृत्यु के बाद, निर्वाण के बाद सब कुछ शून्य हो जाता है, सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है। शून्य कहीं भी नहीं है भगवान की सृष्टि में। और भगवान ने बता रहे हैं कि ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है, भगवान का धाम उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। यानी कि बहुत लोग सोचते हैं इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं, सब खत्म हो जाएगा, पाप पुण्य किसने देखा है। लेकिन यहाँ बात बता रहे हैं प्रभुपाद, एक आध्यात्मिक वैदिक व्यक्ति समझता है कि यही जीवन कोई एकमात्र जीवन नहीं है, बल्कि इस जीवन के बाद भी आगे एक हमारा जीवन है और उसके लिए वो तैयारी करता है। इस जीवन के अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है, यानी भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। भगवान, भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। अगर कोई भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति कर लेता है, थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर प्राप्त कर लेता है तो चाहे वो भौतिक जगत में हो चाहे वो आध्यात्मिक जगत में, उसको आध्यात्मिक जगत का ही आनंद अनुभव होगा। इसकी चर्चा आगे भी आएंगी, श्लोक भी कोट किए जाएंगे प्रभुपाद जी के द्वारा। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना मृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावना मृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावना मृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। यानी कि ये जगत ही उसके लिए भगवत धाम बन जाता है। क्यों? क्योंकि हर वस्तु उसे कृष्ण का स्मरण कराती है, हर वस्तु वो कृष्ण की सेवा में नियोजित करता है, भोगी बुद्धि आती ही नहीं है। तो ये है लाभ भगवान की भक्ति का अभ्यास करने से। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं, अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवद्गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समति त्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। भौतिक बंधन होता ही क्यों है? भौतिक बंधन होता है जब हम कुछ भोग करते हैं तो उसका संस्कार मन में पड़ता है और भोग की वासना और प्रबल होती है, और उस वासना उस इच्छा के द्वारा फिर से भोग करने के कार्य में हम प्रवृत्त होते हैं। लेकिन अगर अपने वाणी को, अपने मन को, अपने शरीर को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये संस्कार, भक्ति के संस्कार, हमारे हृदय से भोग की वासना को मूल से हटा देते हैं। तो इस प्रकार के भोग के संस्कार हट जाने से, भोगों की प्रवृत्ति हट जाने से दोबारा शरीर नहीं ग्रहण करना पड़ता है। तो इसलिए ऐसी ब्राह्मी स्थिति जिसमें कोई भौतिक इच्छा ना रहे, ये जो कि भक्ति के द्वारा होता है, व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रील भक्तिमूर्ति ठाकुर ने भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद्गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो यानी जो अध्याय दो है ये भगवद्गीता का सार है। भगवत कृपा से आज हमारा भगवद्गीता का दूसरा अध्याय की व्याख्या हमने करने का प्रयास कर रहे थे समाप्त हुआ। अब आगे भगवान की इच्छा होगी तो तीसरे अध्याय की हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।